हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने रविवार का कीमती समय भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए देने का निर्णय लिया। वैसे हमारे संस्कृति में हफ्ते में एक दिन छुट्टी क्यों होती है, कुछ आइडिया आप? आपका क्या विचार है कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है ना? किसी देश में शुक्रवार को होती है, किसी देश में रविवार को होती है, किसी देश में मंगलवार को होती है, जो भी अपना कन्वीनियंट सोई सुविधा जो भी है, लेकिन वो एक दिन की छुट्टी क्यों होती है? क्या विचार है आपका उसके बारे में? एक व्यक्ति कम से कम बताइए कि आपका विचार क्या है, छुट्टी क्यों होती है और क्यों होनी चाहिए? प्रभु स्मरण कर सके, आपका क्या कहना है? मैं तो बोलता हूँ कपड़े धोने के लिए टाइम चाहिए ना। कपड़ा धोना है, कुछ खरीदी करना है, कुछ मार्केट में जाके कुछ खत्म हो गया घर पे वो लाना है, घर को भी साफ करना है, बच्चों को थोड़ा पढ़ाई भी लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट काम है। और एक इम्पोर्टेंट काम है बहुत ज़रूरी, छः दिन हफ्ते के दिन भर काम करने के बाद में थकान तो होती है ना, विश्रांति भी लेना है। क्योंकि आजकल के ज़माने में 12 घंटे के कम काम नहीं कर सकते हैं, फिर चलेगा कैसे, है ना? 8 घंटा भी अगर फॉर्चुनेटली आप अच्छी कंपनी में काम करो, 8 ही घंटा काम होता है समझो, फिर भी जाने आने में 1-2 घंटा जाता है, तैयारी करने में आधा घंटा जाता है, आने के बाद कपड़ा बदलने हाथ पाँव धोने में आधा घंटा जाता है, तो 12 घंटे तो गए ना आपके, कहीं भी नहीं गए, 12 घंटे तो गए ही। उसके बाद रात को सोना भी है, फिर भोजन भी करना है, फिर स्नान वान भी करना है, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ करना पड़ता है ना, शरीर का धर्म है, तो विश्रांति लेना भी ज़रूरी है ताकि अगले हफ्ते के लिए फिर तैयार हो जाए काम करने के लिए फ्रेश होकर। नहीं तो ब्रेक नहीं मिलेगा तो आदमी अगले सोमवार को भी ऐसा थक के काम पे जाएगा, तो फिर कैसे काम करेगा? ये सारे योग्य उद्देश्य हैं छुट्टी के और होने भी चाहिए। उसके ऊपर एक उद्देश्य है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं छुट्टी को? हॉलीडे। उसका अर्थ है होली डे, पवित्र दिवस। 7 दिन मन से और दिल भर के भगवान का नाम लेने में जरा टाइम नहीं मिलता है, भागदौड़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चों का डब्बा बनाना होता है, स्कूल भेजना होता है, पति का डब्बा बनाना है, अपना डब्बा बनाना है, काम पे जाना है, लौट के आना है, झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है, तो चाहे जितना दिल भर के भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं मिलता है। तो हॉलीडे जब 8 घंटा कम से कम काम में छुट्टी है, उसमें से 4 घंटा सो भी लिए, 2 घंटा कपड़ा भी धो लिया, तो भी 2-3 घंटा तो बच ही जाता है, उसमें भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग श्रवण सत्संग करने के लिए ही दिया गया है। क्रिश्चियन धर्म में भी इतवार के छुट्टी का संकल्पना वहीं से शुरू हो गई है कि एक दिन चर्च में जाना है, 1-2 घंटे जो भी है उनका प्रवचन सुनना है, प्रणाम करना है, बाकी लोगों से भगवान के विषय में चर्चा करनी है, भगवान के विषय में ही साथ में रहना है। ऐसा नहीं कि पिक्चर की कहानी बताने के लिए, कल में कौन सा पिक्चर देखा उसकी चर्चा करने के लिए नहीं, भगवान के ही विषय में चर्चा करने के लिए एकत्र आना है, कुछ सुनना है, कुछ बोलना है, कुछ चर्चा करना है, भगवान का कुछ पवित्र अन्न प्रसाद मिलेगा वो खाना है और घर जाना है, फिर बाकी के घर के काम करने हैं। अरब कंट्री में भी शुक्रवार का दिन आता है, उसको बोलते हैं जुम्मा। उस जुम्मे के दिन में एक एक्स्ट्रा प्रार्थना होती है जो रोज़ नहीं होती है, रोज़ वो लोग 5 बार पढ़ते हैं, जुम्मे के दिन एक छठवीं प्रार्थना होती है, विशेष प्रार्थना। मैं वहाँ पर सऊदी अरब में 2 साल रह चुका हूँ, मुझे पूरा पता है उनका शेड्यूल क्या होता है, कितने बजे कौन सी प्रार्थना होती है, शुक्रवार की कौन सी होती है, रमज़ान में कौन सी एक्स्ट्रा प्रार्थना होती है, सब मुझे पता है। लेकिन छुट्टियों का मेन पर्पज़ जो है वो भगवान के विषय में समय देने के लिए है, और छुट्टी उसके लिए क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमने मनुष्य का जन्म की जन्म किस लिए लिया है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य का जन्म जो है भगवान की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है और भगवान की प्राप्ति के लिए उसका यूज़ करना है। लेकिन ऐसा ज़माना आ गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए किया हुआ प्रयास छोड़कर बाकी सब कुछ हम कर लेते हैं, जिसके लिए आए हैं वो छोड़कर बाकी सारे काम कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं करते जिसके लिए आए हैं। जैसे बॉम्बे से पुणे निकला ना मैं आज, तो बीच में एक सेशन आता है, क्या नाम है उसका, करजत। करजत आने के पहले एक खुशबू आने लगती है, पता है कौन सी? बटाटा वड़ा, देखो सबको मालूम है। तो वो खुशबू आने से ही लोग तैयार होते हैं कि अभी उतर के बटाटा वड़ा खाना है। कुछ गाड़ी में आता है, कुछ बाहर जाके खाते हैं कैसे। लेकिन समझो कोई आदमी वो बटाटा वड़ा खाने में इतने व्यस्त हो गया, एक खाया दो खाया, बोले और चटनी दे थोड़ी सी, वो चटनी कम पड़ रही है, थोड़ा पाव पाव भी देना, ऐसा करते करते खाने में व्यस्त हो गया और ट्रेन निकल गई। तो निकला था पुणे जाने के लिए, लेकिन अटक गया करजत में, वो भी करजत में भी नहीं बटाटे वड़े में। एग्जाम्पल बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा ही हमारा ज़िंदगी का कुछ हो गया है। निकले थे पुणे जाने के लिए, अटक गए करजत में। वो करजत में क्या है, वो परिवार है, नौकरी धंधा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारा सारा ध्यान अटक गया और भूल गए हम लोग की। जैसे हम लोग समझो अभी आप गाड़ी में बैठे हो ट्रेन में और मैं आपके बाद में बैठा हूँ, मैं पूछता हूँ आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलेंगे पता नहीं। वो पूछ रहे आप कहाँ जा रहे हो, बोले पुणे जा रहा हूँ। गाड़ी हैदराबाद एक्सप्रेस है, हैदराबाद तक जाएगी, तो आपको उम्मीद है कि आप बोलेंगे सोलापुर उतरूँगा, मुझे कोल्हापुर में काम है, मुझे सोलापुर में काम है, मुझे आगे गुलबर्गा में काम है, नहीं मैं तो हैदराबाद जाऊँगा, मेरे ससुराल जा रहा हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति आपको बोलेगा अगर कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे उसको आप? मन में सोचेंगे पागल व्यक्ति है, ट्रेन में बैठा है लेकिन उसको पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाना है उसको। वैसे अगर हम आपको पूछेंगे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, तो आप बोलते पता नहीं, खाना पीना रहना मजा करना पैसा कमाना है, कहाँ जाना किधर है। बीच में कहीं घूम के जाना है, कुल्लू मनाली, कोई माथेरान, महाबलेश्वर घूम के आए छुट्टियों में, और कहीं बच्चा बोलेगा ले लद्दाख लेके जाओ, हिमालय लेके जाओ, तो वहाँ लेके जाना है। लेकिन बाद में क्या करना है, मतलब इसका मतलब ये है कि मनुष्य हम लोग बनकर आए हैं जो हमको पता ही नहीं इसको उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं और कहाँ जाना है, क्या हासिल करना है। बच्चा स्कूल में जाता है तो आप उसको पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो, बोले पता नहीं मेरे पापा ने भेजा इसलिए आ रहा हूँ स्कूल में। बहुत पीछे लगते हैं स्कूल में, चलो उठो उठो स्कूल जाओ स्कूल जाओ। लेकिन आपको आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, नहीं पता नहीं मैंने सोचा नहीं इसके बारे में कुछ। कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ बोलेंगे इंजीनियर बनना है, कुछ बोलेंगे बिजनेसमैन बनना है, कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री बनना है पॉलिटिक्स में जाकर। तो कम से कम कुछ गोल है लाइफ में कि भाई स्कूल में क्यों जा रहा हूँ मैं, तो मेडिकल में क्यों जा रहा हूँ, कि आगे मुझे स्पेशलिस्ट बनना है। जैसे एक लड़की ने कहा वो मीटिंग के अंदर दसवीं में कि मुझे ब्रेन का सर्जन बनना है, दसवीं में बोल रही है 15 साल की उम्र में, लेकिन उसके माइंड में फिट है वो, आगे 10 साल का काम है उसको पढ़ाई करने का, लेकिन उसको माइंड में फिक्स है मुझे क्या बनना है आगे जाकर और क्या करना है। वैसे हम सब लोगों को जो हम लोग सब मनुष्य बने हैं हम सबको पता होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है और क्या करना है और क्यों करना है। अब अगर कुत्ता बिल्ली को पूछेगा आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो खाली वाँव वाँव करेगा, बोला हड्डी दो खाने की भूख लग रही है ना। लेकिन हमारा तो जीवन ऐसा नहीं है, हमको भगवान ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, इतना बुद्धि दिया है, उसके अंदर विचार करने की शक्ति दिया है, और हम लोग भोजन अच्छा पका के अच्छी तरह से साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, महाराष्ट्रियन, मारवाड़ी क्या क्या बना के खा सकते हैं, इतने हजारों प्रकार के व्यंजन है हमारे पास, वो कर सकते हैं हम लोग डांस कर सकते हैं, क्लासिकल सिंगिंग गायन कर सकते हैं, वाद्य बजा सकते, कोई पीटी बजा सकता है, कोई वायलिन बजा सकता है, ये सब जानवर नहीं कर सकते ना। इतनी सारी सुविधा हमको दी है, देखो हमारे पास हॉस्पिटल्स है, इलाज करने का तरीका है, कुत्ता बिल्ली बीमार हो गया तो उसका हॉस्पिटल है कोई क्या, अब मालिक के पास कुत्ता रहेगा तो उसका एक हॉस्पिटल है, लेकिन जो आम कुत्ते वगैरह घूमते हैं उनके लिए हॉस्पिटल का कोई व्यवस्था है क्या? जो पालतू कुत्ते हैं उनके लिए है खाली, लेकिन जंगल में हिरण को बुखार आएगा तो उधर जंगल में हॉस्पिटल है क्या उसके लिए? नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, एक्यूपंक्चर है, एलोपैथी है, हाँ क्या नहीं है, हर प्रकार का इलाज है। और जानवर लोग कैसे डिलीवरी किधर भी कर लेते हैं, बाजू में जाके छुप के अपना डिलीवरी कर लिया, एक एक बार छः छः बच्चे पैदा करते हैं, कुत्ता चूहा और बाकी सारे जानवर लोग। और हमारी औरत जब भी प्रेगनेंट होती है तो कितना उसके लिए इंतज़ाम होता है, कितना इंतज़ाम होता है। डिलीवरी के बाद भी हमारा बालक एक एक साल तक बोल नहीं पाता है, और गाय का बालक तुरंत खड़ा होकर दूध पीने लगता है और चलता भी है। उसको कुछ ऊँट वगैरह होता है ना, ऊँट वगैरह लात मार के उसको खड़ा कर देते हैं। उनके लिए ऐसा सुविधा नहीं है कि एक साल तक माँ के गोद में पड़े रहो आराम से, सब टट्टी पेशाब निकाले जा रहे हैं, आराम से पड़े रहो, ऐसा नहीं है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको कि इतनी सारी सुविधाएं आपको दे के रखी है भगवान ने। इतना मतलब एक तरह से क्या है, हम एक VIP जीव हैं, सभी जीवों के सामने एक हम VIP जीव हो गए ना। फिर देखो कपड़े पहन के, कोई कपड़े साउथ इंडियन पहन रहा है, कोई नॉर्थ इंडियन पहन रहा है, कोई कुछ प्रकार के कपड़े पहन रहा है संस्कृति के अनुसार, कोई बंगाली उल्टी साड़ी पहन रहा है, कोई कुर्ता सब पैजामा पहन रहा है, कोई शेरवानी पहन रहा है, कोई पंजाबी पेठानी ड्रेस पहन रहा है। पहनने के कितने तरीके हैं, बोलने के कितने तरीके हैं, इतनी भाषा है। कुत्ते का भाषा है क्या, कोई कोई भाषा नहीं। हमारे पास कितनी भाषाएं हैं, हर 100 किलोमीटर भाषा बदलती है। तो ये सब क्यों दिया है भगवान ने, ये बताने के लिए कि आपका जीवन बहुत स्पेशल है, आपका जीवन साधारण नहीं है, कुत्ता बिल्ली मछली के जैसा नहीं है, छिपकली मच्छर और चूहे जैसा नहीं है। हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए इतनी सारी फैसिलिटी दी है। और उस सारी फैसिलिटी में एक सुंदर दिमाग दिया है जिससे आप सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है, आप तय कर सकते हो, उसके अनुसार योजना बना सकते हो, उस योजना के लिए प्रयास कर सकते हो, धन जोड़ सकते हो और उस अंजाम तक पहुंच सकते हो। उतना बुद्धि और मन भगवान ने आपको दिया है। इससे उसका नाम क्या है, मनुष्य, मानव का मतलब क्या है, जिसके पास विकसित मन है विचार करने जैसा, उसको मनुष्य कहते हैं। अगर मनुष्य होकर आप विचार नहीं करते तो आप मनुष्य नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। जैसे आया वैसे जी रहे हैं तो मतलब आप मनुष्य नहीं है। विचार करने वाला व्यक्ति मनुष्य होता है। और विचार क्या करना है आपको कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, क्या पर्पस मेरे लाइफ का है, मैं इसी घर में क्यों आई हूँ और मुझसे भगवान की क्या उम्मीद है, भगवान कौन है फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो मैं कौन हूँ सबसे पहला सवाल है, उसके बाद भगवान कौन है, अगर भगवान है तो वो कौन है, और अगर है मालूम पड़ा है तो मेरा उनका रिश्ता क्या है, और मालूम पड़ा कि रिश्ता क्या है तो रिश्ता बनाना कैसे बाद में, जो छूट गया रिश्ता अभी उसको जोड़ना कैसे, और ये सब रिश्ता बना के बाद में जाना कहाँ है, ये सब जानकारी करने के लिए मनुष्य जीवन है। उसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, मराठी में कहते हैं जिज्ञासा, हिंदी में कहते हैं जिज्ञासा, लेकिन वही ब्रह्म यानी कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। ये सुविधा, ये बुद्धि जानकारी करने के लिए केवल मनुष्य के लिए ही दी गई है। और मनुष्य अगर इस बुद्धि का जिसके लिए दिया गया है उसके लिए उपयोग नहीं करता है तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन नहीं है वो। अगर मनुष्य होकर अगर हम ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते हैं, भगवान के विषय में इंक्वायरी नहीं करते हैं, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वो दो पैरों वाला प्राणी है, द्विपद पशु। मनुष्य तो है, वो शरीर मनुष्य का है लेकिन वो प्राणी जैसा ही जी रहा है। वो प्राणी क्या करता है, किसी को पता है प्राणी का एक्टिविटी क्या होता है, बता सकते हैं आप, प्राणी क्या करता है, आपने क्या देखा है प्राणियों को, देखा है तो प्राणी क्या करते रहते हैं, खाना सोना घूमना और उसके आगे नर मादी का संबंध करके बच्चे पैदा करना, और कोई अटैक करेगा तो रक्षा करना अपनी, है ना। छोटा कुत्ता अगर है, बड़ा कुत्ता आ गया तो भाग जाना, अगर मुर्गी का पिल्ला है घर आ गई ऊपर से, हाँ क्या बोलते हैं उसको, घर को क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं ईगल नहीं, वो आकाश में उड़ता है ना, हाँ वो आ गया तो मुर्गी उसको लेके भाग जाएगी या मुर्गी का बच्चा भी भाग जाएगा। चार मेन काम करते हैं वो, कौन से काम, आहार, निद्रा, सुरक्षा और मैथुन, उसके अलावा कुछ नहीं करते वो। और वो चार काम हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, एक जीव होने के नाते ये चार काम हम भी करते हैं। हम भी भोजन के लिए प्रयास करते हैं, वो भी प्रयास करता है दिन भर, हम लोग 9 to 5 नौकरी करते हैं, ट्रेन से जाते आते हैं, वो अपने इलाके में ढूंढते रहते हैं खुद क्या मिलता है। आहार हो गया, फिर थक गया तो सोना है रात को, हर जीव को सोना है, मच्छर हो या हाथी हो या इंसान हो, रात को आपको सोना है, या तो कोई जानवर प्राणी जो है दिन में सोता है रात को जगता है, जैसे शेर जो है वो दिन भर सोता है रात को शिकार करता है, ऐसे बहुत पक्षी भी है, क्या कहते हैं उसको, घुबड़, उल्लू, उल्लू वो रात को, वटवागुड़ वो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, लेकिन उनको सोना तो निश्चित है, आराम करना ही है। और भय यानी कोई संकट आया तो रक्षा करने अपने आप की, हम लोग ताले लगाते हैं या मशीन गन राइफल चाकू रखते हैं रक्षा करने के लिए, उनके पास नाखून है, उनके पास अपना अपना चोच है, जो भी कुछ है। और सबके लिए पुनरुत्पादन की व्यवस्था भगवान ने की है, हर जाति को आगे बढ़ाने के लिए नर मादी एकत्र होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर वो भी बच्चे पैदा करते हैं और वो जाति आगे चलती रहती है, मनुष्य की, प्राणियों की, कुत्ता बिल्ली की। अभी शेर कम हो रहा है इसलिए मेहनत की जा रही है कि शेर का तो नंबर ही कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये चार एक्टिविटी ना हम भी करते हैं और प्राणी भी करते हैं। अगर ये चार एक्टिविटी चींटी भी कर सकती है और हम भी कर रहे हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि फिर वो चींटी का दिमाग तो इतना सा है, एक नैनोग्राम होगा, मिलीग्राम भी नहीं, चींटी का वजन ही कोई 2 मिलीग्राम होगा शायद, टोटल वजन करेंगे चींटी का तो कौन सा काटा लाएंगे उसके लिए, दिखता ही नहीं कुछ, हिलता ही नहीं कुछ उसके ऊपर, समझो छोटा सा एकदम सोने का होता ना जो जवार के पास होता है ना, उससे भी करेंगे तो नहीं आएगा उसका, उसका अलग वजन करेंगे तो भी शायद 1 ग्राम या 500 मिलीग्राम वजन आएगा उसका, उसके अंदर दिमाग कितना ग्राम का होगा तो गिनती करने के लिए अलग कुछ बनाना पड़ेगा उसके लिए। उतना भी दिमाग जो है वो चींटी के लिए चार चीज करने के लिए पर्याप्त है, और हम भी वही चीज कर रहे हैं तो हमको इतना बड़ा दिमाग देने की जरूरत क्या है, है ना। जो चूहे के सर पे दिमाग है वो भी चूहे के लिए चार चीज करने के लिए काफी है, कुत्ते के सर में जितना दिमाग है उसके लिए भी काफी है, हाथी का इतना बड़ा शरीर चलाने के लिए जितना दिमाग है उसके लिए वो काफी है, तो हमारे लिए इतना सुपर फाइन ब्रेन क्यों दिया है, उसका पर्पज है, उसका पर्पज ये है कि ये दिमाग से आपको चार चीज तो करना ही है, कैसे पेट भरना है वो तो देखना ही है, लेकिन आगे भगवान क्या है वो जानने के लिए वो दिमाग जरूरी है। वो दिमाग कुत्ते के दिमाग में नहीं फिट किया है, वो फिटिंग आपके दिमाग में किया है, आपके इधर खोपड़ी के अंदर उसको फिट किया है, ताकि आप लोग, हम लोग ये चार चीज़ों के साथ भगवान को जानने के लिए भी उसका इस्तेमाल करें। देखो मैं डॉक्टर हूँ, हाँ मैंने कम से कम 8-9 साल पढ़ाई किया है, इतने बड़े बड़े किताब, एक नहीं एक एक विषय के इतने बड़े बड़े, और कम से कम 9 से 10 विषय होते हैं, अभी तो ज़्यादा हो गए हैं, अलग 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 बने हैं, लेकिन एक एक विषय के इतने बड़े पिता होते थे, ऐसा उठा के चलते थे हम लोग तो थकते थे हम लोग उसको उठा के। मेरा विचार था कि मेडिकल में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, इतना सारा किताब फिर तो पढ़ना है, समझना है और उसको अमल भी करना है उसके आगे, और वो भी किस पर, मशीन पर नहीं करना है, इंसान पे करना है उसका अमल, जो मैं पढ़ूंगा उसका उपयोग आपके लिए करूंगा ना, यहाँ से काट दूंगा तो ये रोएगा नहीं, लेकिन आपको उंगली गलती से काट दिया तो आप चिल्लाएंगे मेरे ऊपर, तो वो बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसको, जोखिम वाला काम है, रिस्क वाला काम है, क्योंकि वो मनुष्य के ऊपर जो बोलता चलता व्यक्ति है उसके ऊपर उसको अमल करना है, मेरे को लगता था कि बहुत बड़ा दिमाग की आवश्यकता है इसके लिए। लेकिन जब मैं हरे कृष्ण आंदोलन में प्रवेश किया और जब भगवद गीता पढ़ने लगा, श्रीमद् भागवत पढ़ने लगा, तो मुझे ये यकीन हुआ और ये मुझे अनुभूति भी हुई कि ये समझने के लिए मेडिकल किताब समझने की ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता है, ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैंने मेडिकल किताब भी पढ़ी हुई है पूरी, कई साल तक पढ़कर अभी मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, तो मेरा ये अनुभव है आपको बता रहा हूँ कि जितना दिमाग मेडिकल के किताबों को पढ़ने में लगता है उससे कई गुना अधिक दिमाग जो है वो भागवत और भगवद गीता समझने में लगाना पड़ता है। मतलब दिमाग का साइज कितना किलो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, क्वालिटी, दिमाग का क्वालिटी जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत है ये भगवान का विषय समझने के लिए। और वो भगवान का विषय समझने के लिए हमको ये सुपर फाइन ब्रेन दिया गया है। तो आप बोलेंगे आप तो बहुत बुद्धिमान हो, आप डॉक्टर हो, हम तो इतने बुद्धिमान नहीं, हम तो क्लर्क है, हम लोग फलाना है, हम घर की गृहिणी है, लेकिन सबके दिमाग में भगवान को जानने के लिए पर्याप्त मेंदू भगवान ने दिया है, उसके लिए अधिक पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए धनवान घर में लेने की जरूरत, जन्म लेने की जरूरत नहीं है, उसमें ब्राह्मण कुल में जन्म होना चाहिए ऐसे भी जरूरत नहीं है। ब्राह्मण कितने लोग होते हैं समाज में, 25% हो सकते हैं ना, क्योंकि क्षत्रिय भी है और कोई वैश्य भी है, कोई बिजनेसमैन भी है, कोई हेल्पर भी है, तो चार कैटेगरी से समाज बनता है कि नहीं, तो उसमें अधिक से अधिक कितने ब्राह्मण होने चाहिए, अभी तो कम हो रहे हैं लेकिन 25% हो सकते हैं ना, बाकी 75% तो ब्राह्मण ही नहीं है, तो क्या वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? नहीं, जो मनुष्य बनकर आए हैं वो सबके दिमाग में ऐसा वो ब्रेन फिट किया गया है कि उससे भगवान को आप मिल सकते हो उसका इस्तेमाल करके। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सारे मनुष्य जीव इसको छोड़कर बाकी सब कुछ करने में बिजी है। वो एक हिंदी में गाना था बहुत, बचपन नींद क्या बचपन खेल कर खोया, जवानी नींद में रोया, क्या ऐसा कुछ गाना है। इसमें कहते हैं कि मतलब क्या है कि जब बच्चा होता है बालक कोई जीव मनुष्य जीव तो इतना खेलता है कि खेल के बिना कुछ दिखता ही नहीं उसको, खिलौना और खेल उसमें पूरा उसका बचपन गुजर जाता है। फिर जैसे जवान होता है तो फिर स्त्री अच्छी लगती है, स्त्री को लड़का अच्छा लगता है, लड़की को लड़की अच्छा लगता है, फिर उसमें पूरा दिमाग जाता है उनका, बहुत साल तक वो इसमें घूमते रहते हैं, पहले लव अफेयर गर्लफ्रेंड कॉलेज करके बाद में फिर शादी तक उनका उसमें रहता है, फिर कुछ साल उसमें बीत जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, संसार गृहस्थी का थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है, फिर थोड़ा सा कर्तव्य में सेटल हो गए, घर सेटल हो गया तो फिर शरीर बोलता है कि अभी ब्लड प्रेशर बढ़ा है, फिर डायबिटीज़ हो रहा है, फिर बैक एक हो रही है, फिर ये हो रहा है, फिर अभी टेस्ट करना है, ऐसा करना है, हेल्थ चेकअप करना है। फिर बुढ़ापे में क्या बोलता है कि उठने को नहीं हो रहा है, ऐसा मुड़ेगा तो गर्दन दुखती है, ज़्यादा मुड़ेगा तो पीठ दुखती है, पाँव मोड़ के नहीं बैठ सकते हैं, टेबल पे बैठना पड़ता है। तो सारा दिमाग जो है ना वो बीमार शरीर में केंद्रित रहता है। अभी आप देखिए कभी भी, सॉरी मैं किसी को टिका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो 50-60 ईयर के हो गए ना उनकी बातचीत कभी ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। वो खाली ये बोलते रहते हैं कि आज डॉक्टर को मिलना है, अभी पेट में दर्द हो रहा है, हार्ट में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेट में जलन हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है, अभी ये चेकअप जाना है, ये डॉक्टर ने मिलने को बोला है, ये डॉक्टर ने ये टेस्ट करने को बोला है। कभी मॉर्निंग वॉक पे जाइए आप गार्डन में, बहुत सारे एल्डरली ना बुजुर्ग लोग वहाँ पर चलते रहते हैं, बीच में बैठ के चाय पीते हैं वो लोग, उनका एक रूटीन होता है, तो चाय पीने बैठते हैं ना तो कुछ देर बातें करते हैं, वो बातें कभी आप सुनना क्या बोल रहे हैं, यही बोलते रहते हैं कि यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, ऐसा दुख रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ होते रहते सबको एक उम्र होने के बाद में, और एक दिन जिंदगी खत्म हो जाती है ये सब करते हुए, तो जिसके लिए आए थे वो तो होता ही नहीं है। और प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं भागवत में, वो कहते हैं कि 5 साल के उम्र में मनुष्य के लिए भगवान के विषय में ट्रेनिंग शुरू होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? अरे हम लोग तो बोलते हैं कि ये तो अभी करना थोड़ी काम है, ये सब कुछ अपना कर्तव्य निभाओ पूरा अच्छी तरह से, फिर जब बूढ़े हो जाओगे तो रिटायर हो जाओगे, सबका जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा तो खूब भजन करने लगा भगवान का, फ्री टाइम है रिटायरमेंट के बाद में, रिटायरमेंट का टाइम है ही उसके लिए, 58 हो गया, एक बार बैंक बैलेंस हो गया, ग्रेचुटी रिफंड विफंड क्या बोलते हैं उसको, प्रोविडेंट फंड ये सब मिल गया, एक बार बैंक में जमा हो गया, घर अपने नाम का हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने पैर पे खड़े हो गए, अपना काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद में केवल भजन ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है, अभी नहीं करना है, अभी तो कितने काम है, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, ये ऐसा हम लोग बोलते हैं। क्योंकि जब मैं इसमें आया था तब मैं विद्यार्थी था, मेरा उम्र 19 साल का था, 20 साल का था, मेरे पिताजी बोलते थे ये क्या उम्र है कैसा भोजन करने का, ये तो पढ़ाई करना है आपको, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के सफल डॉक्टर बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, फिर आपको घर बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, सारे कर्तव्य को निभाना है, उसके बाद में तुम 100 रुपया कमा के 99 रुपया दान दे दो चलेगा, लेकिन अभी नहीं करना है आपको सब कुछ। बहुत विरोध किया हमको उस समय, लेकिन प्रहलाद महाराज एक मिनट, लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि 5 साल में भगवान के विषय में ट्रेनिंग शुरू होना चाहिए, नहीं तो उल्टा बोल रहे हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने सर्कस देखा है? सर्कस में आप देखते हैं ना हाथी इतना बड़ा, ये इतने टेबल पे खड़ा हो जाता है, चारों पैर उसपे, चारों पैर के आधे आधे पैर बाहर रहते हैं, फिर भी वो खड़ा रहता है उसके ऊपर। फिर आप देखते हैं शेर जो है ना वो आग में से कूद रहा है, सिंह जो है वो भी ऐसा कुछ कसरत कर रहा है, वो आग दो तीन आग ऐसे घुमाते हैं उसमें सब शेर जंप करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है वो शेर को कभी लेते हैं सर्कस में? बोलो ना, मुझे बताओ, उत्तर दो। शेर जो है वो उसको इतना सारा ट्रेनिंग देना पड़ता है तो वो कभी लेते हैं उसको? वो इतना सा पिल्ला तब लेते हैं उसको। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, यू कांट टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग, मतलब एक बुड्ढे कुत्ते को आप नया नया कसरत सिखा सकते नहीं हो, आपको कसरत सिखाना है तो आपको पिल्ला कुत्ता को पकड़ना पड़ेगा। और भी इंग्लिश में कहावत है, कैच देम यंग, जवान आदमी को पकड़ो, कुछ करवाना, जीवन जीवन में कुछ कराना है तो जवान आदमी को पकड़ो, तो कुछ वो कर सकता है अपने उत्साह की वजह से। तो अगर सर्कस में अगर जानवरों को कुछ नया नया ट्रिक दिखाना है समझो, तो पिल्ले को पकड़ना पड़ता है। तो जीवन का जो शास्त्र है, जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो तरीका है, उसको अगर सीखना है, अपनाना है, तो क्या बुढ़ापे में सीखना है क्या? जीवन कैसे जीना है, क्या बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, कब सीखना है? एंड ऑफ लिविंग के टाइम पे सीखना है। आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है तो बिगिनिंग ऑफ लाइफ में सीखना चाहिए ना। आपको ये बात जच रही है मेरी? अगर जीवन जीने की कला आपको सीखनी है तो जीवन की शुरुआत में सीखना चाहिए कि एंड में सीखना चाहिए? अरे जीवन तो 75% जीवन बीत गया, अभी 20% बाकी है, मुश्किल से 10-20 साल मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद में। तो जीवन जीने का तरीका वो तभी सीखना है क्या? तभी कुछ नहीं सीख पाएंगे आप। अब समझो आपकी उम्र कितनी है, 50 होगी समझो, और आप समझो आप ये साउथ इंडियन, आप सब आप महाराष्ट्रीय हो समझो, अब मैं बोल रहा हूँ आपको अभी पंजाबी भोजन बनाने को सीखना है, तो अच्छी तरह कब सीख सकते हैं आप? अगर आप 20 साल के होते ना तो आप पंजाबी सीखते, गुजराती, चाइनीज, इटालियन और साउथ इंडियन सब सीख लेते। लेकिन 55 साल की उम्र में बोलेगा आपको कि अभी आपको पंजाबी सीखना है या तमिलियन खाना सीखना है बनाने को, आपको महाराष्ट्रियन भाई खा के बोर हो गया अभी, तो आप नहीं सीख सकते क्योंकि आपकी सीखने की उम्र गई। सीखने की उम्र कभी होती है? कुमार अवस्था में सीखने की उम्र होती है, तब कुछ भी सीखो आप। आप लोगों को पता नहीं होगा, एक साल का बालक होता है ना, एक साल का बालक वो 40 भाषा एक साथ सीख सकता है, एक साथ बिना मिस्टेक किए 40 भाषा सीख सकता है। अगर आप सिखाने का प्लानिंग करोगे तो 40 भाषा सिखाने की शक्ति उस दिमाग में भगवान ने दे दी है। लेकिन उसी एक बालक को आप 35 साल की उम्र में बोलो एक रशियन भाषा सीखो नहीं सीख पाएगा। तो मतलब कुछ भी नया अच्छा सीखना है आपको, तो आपको जितना जल्दी सीखना है उतना अच्छा है, तो ही सीख सकता है वो। 45 ईयर के आदमी को बोलो ड्राइविंग सीखो, बहुत कठिन होगा उसको सीखने में, बहुत टाइम तक एग्जाम देते रहेगा, फेल होते रहेगा, बाद में कभी पास हो जाएगा। लेकिन 17 साल की उम्र को बताओ, 18 साल होते ही लाइसेंस लेने को सिखाओ उसको, 3 महीने में फटाफट मोटरसाइकिल भी सिखाएगा, गियर वाली, नॉन गियर वाली, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, LMV, MMV सब सीखेगा वो। तो जीवन का आपको अगर साइंस सीखना है, जीवन का साइंस, तो तर्क बुद्धि से हम क्या समझ सकते हैं कि जीवन के शुरुआत में सीखना चाहिए उसको। जीवन बीतने पर सीखना नहीं है, जब जीवन है, शुरू हो रहा है, तभी सीखना है उसको। और भी हमारा अनुभव है, जो भी आपने बचपन में सीखा है वो जिंदगी भर नहीं भूलते आप। समझो आपके पापा ने बताया आपको कि थाली में जो परोसा है ना, उसको आड़े हाथ से साफ करके ही खाना है, केवल मिर्ची और कड़ी पत्ता छोड़ के कुछ नहीं छोड़ना है उसके अंदर, एक दाना भी वहां जाना नहीं चाहिए कड़ी पत्ता के साथ। अगर आपका बचपन में आपको सिखाया गया है, जिंदगी भर आप वो फॉलो करेंगे उसका, और आपके बालक को भी वही सिखाएंगे आप। बचपन का एक खासियत है, बचपन के आप जो भी सीखते हैं ना, आपको बचपन में माँ ने ऐसे बाल बनाने को सिखाया था, तो आप जिंदगी भर वैसे ही बाल बनाओगे। यहाँ तक कि समझो आपके घर पर ऐसा आदत है, समझो आपके माँ को आपने दिखाया कि वो पैर से ऐसा टावल उठा लेती हैं, वैसे समझो कई लोगों को होता है ना, हाथ से चावल गिर गया ना, तो ऐसे स्टाइल में पैर से ऐसे उड़ा लेते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं, वही आप जिंदगी भर वैसा ही स्टाइल में टॉवल उठाएंगे। यहां तक आदतों का परिणाम होता है। जो बचपन की आदतें हैं ना, अच्छी या बुरी दोनों, वही जिंदगी भर चलती है, उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। शादी हो गई और हस्बैंड ने बोला क्या तुम करती हो, हमारे घर में ऐसा रिवाज नहीं है, हम लोग वो ब्राह्मण जोशी और हमारे घर में सब पूजा वूजा होती रहती, तुम क्या करते रहते हो उसे। वो समझती सब कुछ है लेकिन वो बदल नहीं सकती क्योंकि आदत इतनी अंदर गहराई में घुस जाती है। तो उस उम्र में अगर आप भगवान के विषय में जानकारी कर लेते हो, सीख लेते हो, समझ लेते हो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप कभी। अगर बचपन में शुभम करोति कल्याणम, हाँ वो रोज करोगे तो आपको जिंदगी भर करने की आदत बनी रहेगी और करते रहोगे उसको आप। दिवाली में अगर आप नरक चतुर्थी के दिन आपको आदत है 4 बजे उठकर तेल लगाकर उठने लगा के स्नान करना है, तो आप हर दिवाली को करेंगे, आपको दिवाली लगेगा नहीं दिवाली हुई है उसके बिना। इतनी ये बचपन की सब चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जीवन अगर भगवान की प्राप्ति के लिए है तो भगवान की प्राप्ति करने की विद्या जो है वो जितनी जल्दी सीखे उतना अच्छा है, संस्कार जितने जल्दी हो जाए उतने अच्छा है। और मैं उसको आगे की बात आपको बताता हूँ। हमारे ना अस्पताल में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है गर्भ संस्कार कार्यक्रम। जैसे ही हमारे पास गायनोकोलॉजी मतलब स्त्री रोग के पास डॉक्टर के पास में जब कोई माता आती है, बोलती है मैं एक महीने की प्रेग्नेंट हो गई हूँ, पहले तो बोलती है कि मेरी पीरियड मिस हो गया है, मेरे को टेस्ट करना है। फिर टेस्ट करती है और पता है प्रेगनेंसी हो गई है, तब से उसको हमारे हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं हम लोग, गर्भ संस्कार। गर्भ अभी एक महीने का है और 9 महीने उसको गुजारने हैं पेट के अंदर, तो गर्भ में भी हम उसको सिखा सकते हैं, श्लोक सिखा सकते हैं, गणित सिखा सकते हैं, संगीत सिखा सकते हैं, आदर्श सिखा सकते हैं, उसूल सिखा सकते हैं, अच्छे विचार सिखा सकते हैं और हर प्रकार की प्रेरणा दे सकते हैं उसको। समझो आपको अपने बच्चे को मिलिट्री का ऑफिसर बनाना है, समझो आपके मन में इच्छा है कि अगर लड़का होगा तो मैं उसको भारत के लिए समर्पित कर दूंगा और वो आर्मी का चीफ बनेगा, ऐसा अगर इच्छा होगी तो आपको गर्भ से उसको ट्रेनिंग दे सकते हो। मुझे भी पता नहीं था डॉक्टर होने के बाद भी ये बात, लेकिन ये बात सच है। आपने गर्भ में सिखाए हुए श्लोक बालक जन्म लेने के बाद तुरंत उठा लेता है, तुरंत पिकअप कर लेता है जो आपने वर्ग में इसको सुनाए हुए हैं। तो एक साइंस है ये। अभी हम प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि 5 साल के बाद में जाना है, लेकिन हमारा जो शास्त्र है वैदिक शास्त्र जो है उसमें ये सब लिखा हुआ है कि गर्भ के पहले दिन से आप बालक को ट्रेनिंग दे सकते हो। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, 90% बालक का जो डेवलपमेंट है ना वो डिलीवरी के पहले ही होता है, पेट के अंदर ही 90% उसका चरित्र जो है ना, चरित्र कैरेक्टर, वो गर्भ के अंदर ही होता है। क्योंकि माँ के अंदर रहता है ना, वो माँ क्या खा रही है, क्या बोल रही है, झगड़ा कर रही है, प्रेम से बात कर रही है, संस्कार से बात कर रही है, कैसे कहाँ जा रही है, मंदिर जा रही है कि किधर और कहीं जा रही है, पिक्चर देख रही है, क्या जो भी कर रही है, उसका पूरा डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे पर होता है। समझो वो एक चोर की पत्नी है, समझो वो माता, तो रोज बातें करेगी आज कितना लेके आए, क्या चोरी किया, कहाँ हाथ मारा आपने आज, वो रोज अगर वही चर्चा करते रहेंगे। समझो वो एक खटिक की बीवी है जो जानवर काट के मांस बेचता है, तो वो घर में वाकई वही चर्चा करेगा ना, आज कितने बकरे काटे, कितना माल बेचा आज, क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ बीच में, क्या हुआ, वो खून का हाथ लग गया हो, वो सब जो भी उसकी बातें होंगी ना। और समझो कोई जिसकी वाइफ जो पुजारी है मंदिर का और उसकी वाइफ गर्भवती है, तो रोज क्या चर्चा करेगा वो, आज वो कौन सी पूजा की, आज महाआरती किया, फिर वो हो गया, फिर ऐसा हुआ, आज उत्सव था, आज में 1000 लोग आए थे, ये खाना बनाया था, ये भगवान को भोग लगाया, मंगल भोग में ये लगाया, शाम को भोग में ये लगाया, आरती में 5 दिए की आरती लगाई, आज वो उत्सव था तो 25 दिए की आरती लगाई, यही बात करेगा ना। ये सारे संस्कार बिना चाहते हुए या चाहते हुए बालक अपने आप ग्रहण करते रहता है, क्योंकि वो पेट में है ना, जहाँ माता जाएगी जो भी चर्चा करेगी वो उसमें ही आए, वो जो खाएगी माता उसी का रस उसको मिलेगा। तो 90% बालक का संस्कार गर्भ के अंदर होता है, उसके बाद में जो बचा हुआ 5% है वो पहले 6 महीने में होता है, और उसके बाद जो 5% बचा है वो 6 महीने से 6 साल तक हो जाता है। उसके बाद में खाली आपको पाउडर लगाना है उसके ऊपर, बस मेकअप करना है उसका, पूरा बन गया वो रेडी, उसका कैरेक्टर बन गया, उसका उसूल आदर्श बन गए, स्वभाव बन गया, सब कुछ बन गया उसका। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बालक जो है ना माता पर शरणागत रहता है उस समय, बालक को अपना खुद का इंडिपेंडेंट रहता नहीं है, उसको पता नहीं मुंह से क्या निकल रहा है और पेशाब कहाँ से निकल रही है, क्या उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, पूरा निर्भर रहता है माता के ऊपर वो, और माता उसको जो सिखाएगी जो करेगी पूरा डायरेक्ट 100% उसका परिणाम उसके बुद्धि पर, मन पर, सबके हृदय पर होता है। उसके बाद में उसका पर्सनैलिटी बनता है, फिर मम्मी को बोलेगा मम्मी मैं लाल शर्ट नहीं पहनूंगा, मेरे को पीला ही शर्ट पहनना है आज, बच्चे बोलते कि नहीं, आज के इतने से बच्चे भी बोलते हैं मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे वो चाहिए आज, आज गुरुवार है मुझे वो पहनना है। आप बोलेंगे नहीं नहीं आज हमको मंदिर जाना है हमको ये पहनना है, नहीं नहीं मम्मी मुझे वही पहनना है। उसका अपना डिजायर इच्छा शुरू होती है उसके बाद में। ये बड़ा साइंस है पूरा। तो ये सब हम क्यों चर्चा कर रहे हैं आज, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आज आप जो भी हो, जो आपने छोटी उम्र में जो भी संस्कार पाया है वही आज हो आप, और वो आपके मन में विचार फिट हैं कि ऐसा ही करना होता है, दिवाली में ये ऐसा ही होता है, हमारी दिवाली में ये सुबह होता है और शाम को ये होता है, हमारे नवरात्रि में घर में ये उपवास होता है और करवा चौथ का उपवास होता है, घर में जो भी हुआ है वही आप करते आ रहे हो, आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, उसको हम संस्कार कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने अपने बालक को बचपन से संस्कार दिए तो वो उसका जीवन बन जाएगा, आज के संस्कार कल का जीवन है उसका। तो अगर आपने अपने बालक को छोटी उम्र में ही भगवान के विषय में रुचि संस्कार दिए तो वो जीवन भर भगवान का भक्त बनते रहेगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, उसके वजह से किसी को कष्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो लाभ ही मिलेगा, वो कल्याणकारी बच्चा होगा कि दुनिया का कल्याण ही करेगा, अगर वो बुरा नहीं करेगा तो कल्याण ही करेगा। और कौन सी ऐसी माता है आप में से बताओ कि आप अपने बालक को परोपकारी कल्याणकारी बनाना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी हमारे बालक कल्याणकारी नहीं बन रहे क्योंकि हम उनको संस्कार नहीं दे रहे हैं उस प्रकार के। अगर पेड़ में ही नहीं तो फल में कहाँ से आएगा, पहले पेड़ सही होना चाहिए ना, फिर फल सही होगा। अगर पेड़ टेढ़ा है तो फल कैसे सही आएगा, तो शुरुआत कहाँ से करें फिर उसकी। इसलिए शुरुआत कहते हैं कि जहाँ भी जब भी आपको समझ में आया तब से आपको भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना शुरू करना चाहिए। कुछ लोगों को 60 साल की उम्र में मालूम पड़ा, कुछ लोगों को 5 साल की उम्र में मालूम पड़ा, कुछ साल को कॉलेज में मालूम पड़ा, कुछ साल को कुछ लोगों को शादी करने के बाद पता चला, शादी ऐसे घर में हुई वहाँ संस्कारी लोग थे तो वहाँ से परिचय हुआ। लेकिन कहा गया है कि जब आपको इस विषय का परिचय होगा वहीं से आपको उसको पकड़ना है और फिर बाद में छोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। यहाँ तक कि देवताओं के जीवन से भी श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन है। अरे हम तो सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, यहाँ पर पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक में जाके रहना चाहते हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि देवता लोक का जीवन में मनुष्य जैसे श्रेष्ठ नहीं है, मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है उनके सामने, क्योंकि देवताओं के लोक से डायरेक्टली भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपको मनुष्यों के लोक में ही आना पड़ेगा और यहीं से भगवत धाम में एंट्री है। समझो आपकी 4 माले की बिल्डिंग है और जमीन के अंदर भी 2 माला है, कहां से एंट्री करते हो? नहीं, 4 माले जमीन के ऊपर है, एक ग्राउंड फ्लोर है और उसके नीचे जमीन में 2 बेसमेंट फ्लोर है, तो अगर आप बेसमेंट जाना है तो कहां से जाते हो? ग्राउंड फ्लोर से। 4th माले में पहुंचना है तो कहां से जाते हो? ग्राउंड फ्लोर से। ग्राउंड फ्लोर ऐसी एक जगह है जहां से 4th माले पे जाने के लिए भी एंट्री है और नीचे जाने के लिए भी एंट्री है। आपको समझ में आया इस किस लिए बता रहा हूं? तो आपका जो पृथ्वी है ना, जहां पर आप जी रहे हो, वो ग्राउंड फ्लोर है। देवताओं को भी यहीं पर आकर आगे जाना पड़ता है, डायरेक्टली वहां से भगवान के धाम की एंट्री नहीं है। और जो नरक में जाएंगे नीचे, उनको भी ऊपर आना पड़ेगा, यहां पर फिर वापस कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और यहीं से भगवान के धाम का दरवाजा खुलता है। इसीलिए देवता लोग भी कलयुग में भगवान के भक्तों में जन्म लेने के लिए लाइन से खड़े हैं, ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है। आप जैसे लोग भगवान के भक्त हैं तो आपके गर्भ में जन्म लेने के लिए देवता लोग लाइन में खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि कलयुग में अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, उसके गर्भ में कोई जन्म लेता है, तो सीधे भगवान के धाम में पहुंच सकता है। इसलिए हमारा जीवन बहुत भाग्यशाली है। देवता लोग आकाश से पुष्पवृष्टि कर सकते हैं आपके ऊपर, सोमरस पी सकते हैं, उनका शरीर में सुगंध आ सकती है, सब कुछ है वहां पर जो हमारे पास नहीं है। लेकिन उनके पास एक सुविधा नहीं है जो आपके पास में, एक फैसिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उनके पास नहीं है, वो यहाँ पर है। आप और हम इसी जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन देवताओं के जीवन में वो मुमकिन नहीं है। आपको नीचे आके मनुष्य बनना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, भगवान के लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके फल स्वरूप आपको इस जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और यही सत्य है। इसलिए इतना सारा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग सब लोग भूल गए हैं कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। जैसे वो ट्रेन का व्यक्ति भूल गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेर आर यू गोइंग, आई डोंट नो बोलता है वो, वैसे हमारी अवस्था हो गई, हमको पता नहीं हम लोग क्यों जी रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, व्हाई मालूम नहीं है, किए जा रहे हैं, पापा ने कहता इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, दुकान क्यों खोला है, पापा का दुकान था, वो बुढ़े हो गए तो मुझे बिठा दिया दुकान में उन्होंने, फिर मैं कर रहा हूँ, मेरा बच्चा भी दुकान में आके बैठता है, वो भी आके आगे दुकान में बैठेगा। और सबको लगता है कि जीवन का उद्देश्य मतलब कैसा है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए। सबके मन में आजकल ये बात फिट है, क्योंकि रिस्पेक्ट भी उसी को मिलता है जिसके पास बहुत पैसा है, चाहे वो अनपढ़ अंगूठा छाप गुंडा हो, लेकिन पैसा है तो उसको सब सलाम करते हैं। तो सबको लगता है कि पैसा होना चाहिए और पैसे के लिए जीना है, पैसे के लिए मेहनत करनी है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि पैसा आने पर दुख भी साथ में आता है उसके, पैसा आने पर अपने हमदर्द लोग भी दूर चले जाते हैं, और खाली स्वार्थी लोग आपके साथ में फ्रेंडशिप रखते हैं। जब गरीब थे तो बहुत प्रेम था, पैसा आ गया तो सब दूर चले गए, ये सबका अनुभव है। लेकिन फिर भी पैसे का मोह किसी को छूटता नहीं है। ये सब जीवन की समस्या है, ये एक्चुअल रियल समस्या है। हमको पता नहीं कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। मुझे लगा था गाड़ी आएगी तो खुशी मिलेगी, मुझे लगा था टू व्हीलर से फोर व्हीलर आएगा तो खुशी मिलेगी, मुझे लगा था कि वन बेडरूम से टू बेडरूम में जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे लगा था कि पर MBBS पास हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तो बहुत साल हो गए सब कुछ करके, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? तकलीफ तो चालू ही है। तो कारण यह है कि हम लोग जो रियल उद्देश्य के लिए जिसमें के लिए जीना है वो छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हैं। और यही हमारे भगवान ने हमको शास्त्र में बताया है कि चाहे आप कुछ भी हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, या और हेल्पर हो, और या तो ब्रह्मचारी हो, या घर वाले हो, या सन्यासी हो, या कुछ भी हो, जीवन का एक उद्देश्य है वो भगवान की प्राप्ति। और ये नहीं कहा है कि भगवान की प्राप्ति करना है तो सब कुछ छोड़ना चाहिए, धंधा करना छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, जंगल में जाओ, गुफा में बैठो, कहीं भी नहीं बताया। वही प्रहलाद महाराज जो कहते हैं ना कि 5 साल में ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वही प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जंगल में जाकर अकेले भजन नहीं करना चाहिए, बोलते हो। अगर आपको इतना भगवान के विषय में ज्ञान है तो शहर में आओ, और जो लोग जानते नहीं है, भूल चुके, उनको याद दिलाओ भगवान की। अगर आप में इतना ज्ञान हो गया है तो बस तपस्या करके, तो गुफा में पड़े मत रहो, ज्ञान हो गए तो वापस आ जाओ और जनता में आकर मिल गुल के उनको बता दो उनके बारे में, ताकि आपका जो ज्ञान है वो लोगों को भी प्राप्त हो जाए, आपकी तपस्या का फल लोगों को भी मिले। ऐसे वही प्रहलाद जी कह रहे हैं। तो शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि गृहस्थ को पत्नी को छोड़ के भाग जाना चाहिए और भगवान के पीछे सन्यासी बनकर दौड़ना चाहिए, नहीं लिखा ऐसे। कलयुग में खास इंस्ट्रक्शन दिया है कि सन्यास लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कलयुग के लोगों के बस की बात नहीं सन्यास को पालन करना, वो टाइम के अनुसार बताते हैं। मतलब गृहस्थ बने रहो, जहां है वहीं पर रहो, जो काम कर रहे हैं वही करो, केवल अपने जीवन में भगवान नहीं है उसको ऐड करो। जो आपका बिजनेस है, जो आपका पेशा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या आप करते हो, करते रहो, लेकिन भगवान को ऐड करो। मतलब क्या? भगवान का नाम लो, भगवान के विषय में सुनो, भगवान की जगह पर चले जाओ, भगवान के मंदिर में जाके वहाँ सत्संग करो, वहाँ सेवा करो, भगवान में जुड़े रहो, और बाकी सारे कर्तव्य करते रहो। धन कमाओ, बच्चे लोगों को बड़े करो, पढ़ाई लिखाई करो, पत्नी की देखभाल करो, पति की देखभाल करो, अपना कर्तव्य निभाओ, सासू की रक्षा करो, माँ की, बुढ़ी माँ की भी सेवा करो, वो सारे कर्तव्य हमको निभाना है, लेकिन भगवान के भजन के साथ में निभाना है। उल्टा हमारा अनुभव ऐसा है कि जो भगवान के सही भक्त बनते हैं ना, वो अपने सारे कर्तव्यों को दिल से पूरा करते हैं। ऐसा मन में गिनती नहीं करते कब मेरी माँ गुजरेगी, तब मैं फ्री हो जाऊँगा। अगर भक्त नहीं है तो मन में केवल यही गिनती करता, अरे केक कब से किटकिट पड़ेगी, कभी जाएगी ये, कभी मैं जरा थोड़ा सा चैन की सांस ले लूँगा, कभी ये बुड्ढा जाएगा। मैंने अपनी आँखों से और कानों से सुना हुआ है। बेटे को बुलाया हमने डॉक्टर को, डॉक्टर ने हमने बुलाया बेटे को कि तुम्हारा पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है, पता नहीं कितने दिन के मेहमान है वो। तो पहले पूछता है फ़ोन पे कि वाकई में सीरियस है क्या, आना पड़ेगा? तो हम बोलते रे आओ जल्दी, वो बहुत सीरियस हार्ट अटैक आ गया है। तो वो आ जाता है बहुत कैसे भी करके, और आके पिताजी वहाँ पर होश में है, बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। पिताजी के सामने ही हमको पूछता है कि क्या लगता है आपको, मतलब मुझे अभी छुट्टी लेकर आना पड़ेगा कि मैं एक बार जाके आ सकता हूँ, कितने दिन के लिए जिएंगे ये? एक नहीं, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर हूँ ना मैं सब कुछ पेशेंट को देखते रहता हूँ। तो मुझे ऐसे बच्चों को मिला हूँ मैं जो पेशेंट के सामने ही पूछते हैं कि ये कब तक जिएंगे, मतलब अभी मेरे को लंबा छुट्टी देकर आना पड़ेगा कि अभी जाके आ सकता हूँ। कितनी दर्द वाली बात है ये बताओ। कल मैं अगर उस बिस्तर पर रहूँगा, मेरा बच्चा मेरे लिए पूछेगा कि कब तक रहेगा पापा, मुझे तो US में नौकरी मिली है, मुझे छुट्टी मिलती नहीं मुझे वहाँ से आने के लिए, वो टाइम भी लगता है आने के लिए। हाँ, एक हमारे पास एक सोसाइटी है, हमारी डॉक्टर फ्रेंड की माँ का घर है वहाँ पर, इतनी बड़ी सोसाइटी है, कम से कम 500 फ्लैट है उसके अंदर, और वो 500 फ्लैट में केवल बुड्ढा और बुढ़ियाँ रहते हैं, और उस सोसाइटी के अंदर 500 फ्लैट के जितने बालक हैं वो सब अमेरिका में रहते हैं, और खाली फोन करते हैं पापा मम्मी चिंता मत करना, जितना चाहिए पैसा भेज दूंगा, बेस्ट डॉक्टर को दिखाना, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। आपको क्या चाहिए बताओ, जो चाहिए बताओ, ऑनलाइन करके भेज दूंगा, पैसा भेज दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, आपको क्या चाहिए बताओ। वो बोलते बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। नहीं मम्मी मैं तो नहीं आ सकता। ये स्थिति है क्योंकि एक भगवान का भक्त ही अपने सारे कर्तव्यों को अच्छी तरह पूरा कर सकता है, क्योंकि उसको जानकारी मिलती है गुरु जी के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कि क्या तुम्हारे कर्तव्य है, तुमको क्या करना चाहिए, क्या क्या ऋण तुम्हारे ऊपर है और कैसे आपको चुकाना है। माँ का ऋण, पिताजी का ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, भूमि का ऋण, जो है वो सब उसको ज्ञान मिलता है, तब जाके वो संस्कारी व्यक्ति जो है ना वो सब कर्तव्य निभा सकता है। और बिना भक्ति किए वो सोचेगा कि कब किटकिट खत्म हो जाती है। दो लाभ है उसके अंदर, एक तो तकलीफ खत्म हो जाएगी मेरी और उनका जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे हो जाएगा, देखभाल करने का कष्ट खत्म हो जाएगा, और मरते ही जो भी प्रॉपर्टी अपने आप चार भाइयों में बांट के लेना है, मजा करना है, प्लान करके रखा हुआ है, जैसे ही खत्म होगा मेरा डबल आएगा तो मैं नए फ्लैट में एंट्री कर दूंगा या मेरी बेटी की शादी कर दूंगा। वेट करते रहते हैं बच्चे लोग आजकल के, क्योंकि संस्कार नहीं उनके ऊपर। और ये सारे प्रकार के संस्कार जो है हमारे मंदिरों में, हमारे संस्थाओं में, आध्यात्मिक संप्रदायों में प्राप्त होता है। तो आपको एक अच्छा इंसान बनना भी है तो भी इसमें आपको लाभ है, खुद के लिए समाधान प्राप्त करना है तो भी आपको इसमें लाभ है। हर प्रकार का नॉलेज भी दिया है कि संतुष्ट कैसे रहना है जीवन में, क्योंकि हर आदमी तो करोड़पति बन नहीं सकता है, कोई हजारों में पगार लेगा, कोई लाखों में लेगा, कोई सैकड़ों में पगार ले सकता है, लेकिन संतुष्टि ये पगार के ऊपर डिपेंड नहीं रहती ना। नहीं तो फिर वो अंबानी दो भाई झगड़ते नहीं कोर्ट में हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए। आप बोलेंगे इसमें एक करोड़ मुझे मिल जाए ना मैं रिटायर हो जाऊंगा, अभी कभी एक ही करोड़ मिलेगा बहुत हो गया, अभी आगे नौकरी नहीं करूंगा, आराम से बैठूंगा घर में और रोज आराम करूंगा, कुछ नहीं काम करूंगा। लेकिन इतने हजारों करोड़ रुपए मिलने के बाद भी वो कोर्ट में लड़ रहे हैं कि उनको और चाहिए, तो समाधान पैसे में है क्या? नहीं है उसके अंदर, वो तो प्रूफ है उसका। आपका पगार 500 रुपए था, आप बोल रहे 1000 मिलेगा ना, मजा आ जाएगा बहुत। जब 1000 मिलेगा तो आप बोलेंगे 5000 होगा ना, तो मजा आ जाएगा। अभी 5 ने आज आपको 50000 पगार मिल रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वो समाधान नहीं मिला जो आपको चाहिए था, तो उसके अंदर है ही नहीं तो कैसे मिलेगा वो। करेले के पेड़ के अंदर आपको आम का फल मिलेगा क्या? आप बोलेंगे मैंने राइट में देखा ही नहीं अभी करेले के झाड़ पे, राइट में देखना बाकी, शायद उधर मिलेगा हमको। लेकिन राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, करेले के पेड़ पर करेला ही मिलेगा आपको। जब आम के पेड़ के पास जाएंगे तो आम मिलेगा। तो संस्कार मिलेंगे आपको तो ही आम मिलेगा आपको, अल्टीमेटली खुशी वाला आम। संस्कार नहीं मिलेंगे तो जीवन व्यर्थ है हमारा। और संस्कार केवल मनुष्य के लिए होते हैं, जानवरों को हम संस्कार करते क्या? नहीं करते। कोई जन्म विधि, नाल काटने का विधि, नामकरण विधि करते क्या किसका? केवल सारे संस्कार जो है ना वो जन्म से लेके गर्भ संस्कार से लेके उसके बाद के जन्म विधि के, नामकरण के, उपनयन के, विवाह के, जितने भी अंत्येष्टि संस्कार भी खाली मनुष्य का होता है। तो संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण है और वही हमको प्राप्त करना है इस जीवन में। और जीवन की स्थिति क्या है आज? कभी भी उत्तर कोरिया अमेरिका में युद्ध छिड़ सकता है और हम बोलेंगे हम तो भारतीय है, हमारा क्या देने देना उसके साथ? नहीं, आपका सबका जीवन उसका प्रभावित होगा उससे, जब वो डालेंगे बॉम्ब एक दूसरे के ऊपर, है ना। आज दिल्ली में क्या हो रहा है? गैस चैम्बर बन गया है दिल्ली का, पता है आपको? दिल्ली के लोगों को गवर्नमेंट ने बता दिया है कि हो सकता है तो दिल्ली छोड़ के चले जाओ। मतलब गैस चैम्बर में डालेंगे ना आपको तो कैसे स्थिति होगी आपकी? ऐसे दिल्ली में रहने का मतलब वो है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। जितने मेरे दिल्ली के फ्रेंड हैं उनको जितने बच्चे हुए हैं वो कम से कम 7-8 बार एक साल में भर्ती हॉस्पिटल में नहीं होते ऐसा उनका बचपन गुजरा ही नहीं आज तक। हर एक बच्चे को ब्रोंकाइटिस और एडमिट, 2 महीने में एक बार एडमिट, ऐसी हवा हो रही है, ऐसा माहौल पैदा हो गया है। मुंबई में दिवाली में भी ऐसा माहौल पैदा हो गया था कुछ समय के लिए, सारे प्रदूषण के पॉइंट पार करके बॉम्बे आगे जा चुका था। आज दिल्ली वर्ल्ड में सबसे पहले रैंक पर बैठा हुआ है, नंबर पर प्रदूषण के किस्से में। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि जीवन अभी कलयुग में इतना आसान नहीं है, पता नहीं कौन किस समय क्या होगा, कब आतंक मचेगा, कब बॉम्ब गिरेगा, कभी क्या होगा, किसका जीवन समाप्त होगा, कोई गारंटी नहीं है। अभी मैं बैठ के आपको अच्छा प्रवचन दे रहा हूँ बैठ के यहाँ पर, लेकिन मैं कल बॉम्बे जाऊँगा तो भी क्या होगा, आई डोंट नो, किधर क्या रास्ता बंद होगा, बीच में एक्सीडेंट होगा, भी धूप इतना वो धुंध गिरी थी कि 15 गाड़ियां एक के बाद ठोक रही है एक दूसरे को, दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। और जिंदगी ऐसे जा रही है कि पूछो मत, चींटियों जैसी जिंदगी खत्म हो रही है। तो ये सब सत्य है, हाँ, ये खाली आपको डराने के लिए या तो ऐसा करने के लिए बताया नहीं जा रहा है, सब सत्य है। और कुछ लोग उसको आंख बंद करके बैठ सकते हैं, कुछ लोग समझ सकते हैं क्या हो रहा है, लेकिन गुजरना सबको है इसमें से। और अगर हमको जाना ही है समझो किसी चीज से, तो बेहतर यह है कि कृष्ण की याद करते हुए जाएं तो कृष्ण की प्राप्ति करेंगे, और किसकी याद करेंगे तो वो प्राप्त करेंगे। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम, भगवान ने साफ कहा है जो मरने के समय आपको याद आएगा ना उसी चीज को प्राप्त करोगे आप। किसी ऋषि ने मरते समय हिरण को याद किया, उसका बहुत प्रिय था हिरण, वो गुम हो गया था तो उसी की याद में तड़प रहा था, और एकदम लास्ट मोमेंट पे वो हिरण कहीं से आ गया, उसको देखा और वो शरीर छोड़ दिया, उसने मर गया वो ऋषि। अगले जन्म में वो ऋषि भी हिरण बना, क्योंकि उसको आखिरी में हिरण की याद आ रही थी, हिरण को ही याद करके तड़प तड़प के वो चिल्ला रहा था, और हिरण को देख के शरीर छोड़ दिया उसने, तो हिरण ही बनना है उसको। ऋषि की बात है ये, हमारी आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ऋषि की स्थिति ये है। हमारे मन में तो कितने विचार रहते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ये नहीं पूरा हुआ, वो पूरा करने का, ये आ जाने का है, वहाँ जाने का है, ये बाकी रह गया, वो कपड़ा पहना ही नहीं, वो डिफरेंट टाइप के दारू तो पी ही नहीं मैंने, पैसे नहीं थे मेरे पास, देसी पिया मैंने, वो स्कॉच नहीं पिया। अरे बहुत लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, ये विनोद नहीं है, ये सच बात कर रहा हूँ मैं आपको। कई अब कैसी इच्छाएं जो नहीं पूरी हुई है, वो सारा चीज़ों इच्छाओं का जो कलेक्शन है ना, कलेक्शन पूरा समूह जो है ना, वो आपको मौत के समय पीटता है कि ये तो रह ही गया मेरा, और वो सोचते सोचते मर जाएंगे, दोबारा उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे, अब पूरी इच्छा पूर्ण करने के लिए। और जो भगवान अंत काले च मामे वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो भगवान की याद करेगा वो भगवान के पास जाएगा। और क्या बोलते हैं भगवान, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, और अगर आप मेरी याद करके मेरे धाम में पहुंच जाते हो, मेरी आपको गारंटी है, मेरा इंश्योरेंस है आपके लिए कि दोबारा लौट के यहाँ पर नहीं आओगे आप। क्या चाहिए हमको और, भगवान जो मालिक है अपने धाम के, वो हमको गारंटी दे रहे हैं आप मेरी याद करके मेरे पास आ जाओ, दोबारा यहाँ ठोकरे खाने के लिए आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जीवन का इस्तेमाल करो और मेरे पास आ जाओ बस, बार बार जन्म जन्मांतर तक बार बार यहाँ पर मत आओ, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इसका झगड़ा उसका झगड़ा, इसके साथ युद्ध उसके साथ युद्ध, ये चाहिए वो चाहिए, इसका खून खराबा, इसको चीटिंग, उसको पॉलिटिक्स, इसका दुख भोगने के लिए बार बार मत आओ यहाँ पर, बहुत कठिन है यहाँ पर जीना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, फिर भी शांति सुकून नहीं मिलता है इसके अंदर। तो ये जीवन में अगर आपको एक ही बार फाइनल सब खत्म कर देना है कष्ट आपका, तो एक ही चारा है, वही भगवान के शरण लेना, और जब पता चला उस क्षण से आपको लेना है उसको। वैसा करेंगे तो आप बोलेंगे बहुत लेट मालूम पड़ा, अभी टाइम ही नहीं बचा मेरे पास, कोई बात नहीं, उसको बोलो भगवान लेट जागा हूँ लेकिन दुरुस्त जागा हूँ, अभी आपके चरणों में हूँ, जो बनाना है बना दो, मैं आपके गोद में अभी आ गया हूँ, मैंने आपके चरणों का शरण ले लिया है, काम बचा है पूरा नहीं हुआ, जो भी हुआ है आपके चरणों में हूँ, आप अभी जो करना है वो करो, आपके ही हाथ में सब कुछ, तो वो करेंगे। जैसे बालक जबकि आपके शरण में है, आप उसकी देखभाल कर रहे हो, कल शादी करके पति के पास चले गए तो आप क्या कर सकते हो, वो तो किसी और के शरण में चले गए हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, जब तक आपके शरण में आप पूरी देखभाल करोगे उसकी। और शादी के बाद भी मैं माँ को पुकारेंगे, माँ मुझे आपके हेल्प की जरूरत है, मुझे वो साउथ इंडियन डिश सीखना है जो मेरा पति मुझे बता रहा है कि चाहिए मुझे, प्लीज सिखाओ मुझे, तब भी आप जाके उसको सिखाओगे। तो कब सिखाओगे, जब आपको पुकारा जाएगा और जब आपको शरण ली जाएगी आपकी किस चीज़ के लिए, तुरंत आप उसको हेल्प करेंगे। उसी तरह से अगर आपने भगवान को पुकारा और उनकी शरण प्राप्त कर ली, तो कहाँ पर भी होंगे आपके पुकार सुनेंगे वो और आपको सहारा देंगे, कितना भी आपका काम अधूरा होगा तो उसको पूरा कर सकते हैं अगर आपकी शरण उस प्रकार की है। तो उनके चरण पकड़ लिए आपने एक बार, तो चरण पकड़े हुए व्यक्ति को कभी छोड़ते नहीं भगवान, वो हम नहीं हैं कि चरण पकड़ को लात मार के हम चले जाएंगे, वो हमारा नेचर है, लेकिन भगवान जिस जो भी उसका चरण पकड़ते हैं वो कभी उसको भूलते नहीं हैं। अगर आपने एक बार चरण पकड़ा और बाद में आप ही कुछ भूल गए कि आपने कभी कुछ उनको पुकारा था चरण पकड़ के, वो नहीं भूलते उसको। हो सकता है ना कि आपने भाई मूड में आके कभी ऐसा भाव में आकर चरण पकड़ लिए भगवान के, बोला भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, और बाद में माया में फंस गया समझो। लेकिन वो एक बार जो आपने चरण पकड़ के पुकारा था, वो भगवान कभी भूलते नहीं। हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलते कभी। बाद में बोलते भगवान मेरे पीछे क्यों पड़े आप, नहीं मुझे याद है आपने मेरे चरण पकड़े थे एक दिन, मैं नहीं भूल सकता कि आपने इतने प्रेम से मेरे को पुकारा था। ऐसे दयालु भगवान हमारे हैं कि जो आपको हर तरह की सहायता कर सकते हैं, हर प्रकार का संकट निवारण कर सकते हैं। उनका सहारा लेना ही बुद्धिमानी है। सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि मेरा एक ही सहारा है, वो भगवान है। बाकी सब सहारे डूबते हुए नजर आते हैं। एक शेर आपको सुनाता हूं मैं। हाँ, सहारा लिया था जिस जिस का हमने, सहारा लिया था जिस जिस का हमने, वो सब डूबते रहे भंवर में बिचारे। जिस जिस का सहारा हम लेते हैं ना, वो समय उनको छीन लेता है हमसे। कोई समय के साथ मर जाता है, या तो समय के साथ में दुश्मनी हो जाती है, या बिछड़ जाते हैं। जिस जिस का सहारा हमने आज तक लिया है, वो सब एक एक समय पर हमको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक सहारा ऐसा होता है हमको कभी छोड़ता नहीं है, मतलब वो सहारा हमको नहीं छोड़ता है। एक बार लिया हमने उसका सहारा तो, और वो भगवान है। और वो सहारा लेने के लिए ज़िंदगी है, वो साइंस सीखने के लिए ज़िंदगी है। भगवान का सहारा कैसे लिया जाए, वो फॉर्मूला क्या है, वो साइंस क्या है, वो सीखने के लिए ज़िंदगी है। और वो नहीं हमने सीखा तो सारा जन्म हमारा व्यर्थ हो गया। चाहे अमेरिका के अध्यक्ष बन जाओ, भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, या कुछ भी बन जाओ, तो जीवन के नंबर वन रिच आदमी बन जाओ आप, कुछ फ़ायदा नहीं है। दोबारा आपको आना पड़ेगा और फिर से पहले एक एक पाई आपको कमाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अंबानी का बेटा था लास्ट लाइफ में, नहीं बन सकते आप। इस लाइफ में आपको फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना पड़ेगा जाके, और हर रुपया पहले से आपको कमाना पड़ेगा शुरू से। ये जीवन की सच्चाई है, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसलिए आप लोगों को विनती है, आप लोग मरीज बनकर यहाँ पर आए इलाज करने के लिए। भाग्य है आपका। भाग्य क्यों कह रहा हूँ आपको, ले रहे प्रभु जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं, तो तकलीफ में थे हम लोग और आप बोल रहे भाग्य आपका। अरे जिस भी कारण, ये न के न प्रकार मन कृष्ण निवश्य, अगर किसी भी कारण से भगवान की आपकी मुलाकात हो जाती है तो वो भाग्य है हमारा। वो बीमारी भी भाग्य है, वो दुख हुआ था वो भी भाग्य है, वो एक्सीडेंट भी भाग्य है। हमारे एक महाबलेश्वर के हमारे भक्त है, हा? वो महिंद्रा में काम करते थे, और महिंद्रा का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा पैनल, उनके मरीज हमारे यहाँ भर्ती होते हैं। तो वो कहीं गिर गए ड्राइविंग करते करते, तो कुछ फ्रैक्चर हो गया, तो अपने पैनल के अनुसार भक्तिवाद में एडमिट हो गए। अब भक्तिवाद में एडमिट हो गए तो उनको वहाँ पर भगवान के विषय में बताया गया, माला दी गई, समझाया गया, रथ आया भगवान का, दर्शन हुआ उसका, प्रण चरण पकड़े, कोई उत्सव मिला उनको देखने के लिए। आज वो खुद बोलते हैं प्रभु जी बहुत अच्छा हो गया कि हमारा हार्ट टूटा और हम भक्तिवाद में आए। अगर हमारा हार्ट नहीं टूटता और भक्तिवाद में नहीं आते तो आज हम भगवान के भक्त कैसे बनते। वो खुद बोल रहे हैं, मैं उनको नहीं बता रहा हूँ, वो अपने आप को मुझे बार बार आके थैंक यू बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने बीमार होकर भक्तिवाद में भर्ती हो गए, क्योंकि उस बहाने वो भगवान की भक्ति का जीवन उन्होंने अपनाया और आज वो जीवन में इतने खुश हैं, भाग्यवान समझते हैं अपने आप को। तो किसी भी प्रकार से अगर भगवान की भक्तों की और भगवान के विषय में जो परिचय होता है तो वो हमारा भाग्य ही है। वो जो चीज़ भगवान की याद दिलाती है वो सद्भाग्य है हमारा, चाहे हमारे लिए कष्ट हो लेकिन वो हमारा सौभाग्य है। और जो चीज़ हमारे लिए सुख वाली है लेकिन भगवान को भुला देती है वो हमारा दुर्भाग्य है। भगवान की अगर विस्मृति करने वाली कोई चीज़ है, धन है या ऐश्वर्य है, आपका कोई समृद्धि है, बड़ा नाम हो रहा है आपका, और उसके लिए आप भगवान को भूल रहे हो तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो आपका यश कीर्ति जो है ना, वही आपके लिए दुश्मन है आपका। इसलिए कहते हैं कि दुख जो है ना जीवन में, वो भगवान का एक्चुअली वरदान है। और सुख हमको सबको चाहिए रहता है, लेकिन सुख भगवान का वरदान नहीं है, क्योंकि सुख में हम लोग अक्सर भगवान को भूल जाते हैं और दुख में हमको हमेशा उनकी याद आती है। इसलिए पाप और पुण्य में अगर आपको चुनना है ना, तो आपको पाप को चुनना चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पाप करो, क्योंकि पाप का जब फल भोगता है ना आदमी, कष्ट भोगता है, तो वो भगवान को पुकारता है, भगवान कहाँ हूँ आप, इतना कष्ट क्यों हो रहा है मुझे, हो रहा है मेरे पाप की वजह से। लेकिन पाप का फल आपको भगवान को याद दिलाएगा, और पुण्य का फल जब आप भोगोगे तो उनको भूल जाओगे, याद ही नहीं करोगे। जरूरत ही क्या याद करने, इतना खुशी हो रही है, क्या जरूरत है पूछने की उनको। ये एकदम उल्टा है, दुनिया जो कर रही है वो अध्यात्म में उल्टा उल्टा है। उसके अंदर सब लोग सुख चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, नाम चाहते हैं, तड़प रहे हैं उसके लिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि दुख होना अच्छा है, क्योंकि दुख में उनकी याद बनी रहती है। शरणागति बनी रहती है, पुकार बनी रहती है, पुकार में दर्द बना रहता है उनके लिए। इसलिए चाहे सुख हो या दुख हो उनको पुकारते रहना चाहिए। हमारे कबीर जी कहते हैं कि दुख में सिमरण करे सब, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरण करे उसको दुख काहे को होए। तो ये जो भक्ति का शास्त्र है ना, ये पहले हमको दुख में कैसे पुकारना है वो सिखाता है, उसके बाद में सुख में कैसे पुकारना ये भी सिखाता है। तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है कि हम सुख में और दुख में, सुखे दुखे बुले ना को बदने हरि नाम करो रे, सुख में हो या दुख में हो, अंतिम क्षण में सुख में हो दुख में हो, उन्हीं को पुकारना है, उनको याद रखना है, तो हमारा जीवन परिपूर्ण है। तो इस प्रेमांजलि कार्यक्रम से आपको हमारी यही विनती है, इस माध्यम से, इस स्टेज से, इस व्यासपीठ से आपको यही विनती है, सुख में रहो, दुख में रहो, घर में रहो, सन्यासी बनकर रहो या गृहस्थ बनकर रहो, अमीर बनकर रहो या गरीब बनकर रहो, पढ़े लिखे बनकर रहो या अनपढ़ बनकर रहो, अच्छे दिखने वाले बनकर रहो या इतने अच्छे दिखने वाले नहीं बनकर रहो, जिस भी स्थिति में रहो भगवान की भक्ति में रहो, भगवान की याद में रहो, तो ये जीवन सफल है, बाकी सब कुछ भूल भुलैया है। एक दिन सारा वो गुब्बारा है ना उसका फुगा वो फूटने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा आपको, जो मेहनत किया, जो पसीना बहाया, सारा उसका फल यही छोड़ के जाना है, लेकिन जो भगवान के विषय में किया है वो आपके साथ जाएगा, जो आत्मा के सर पे किया है वो आत्मा के साथ जाएगा, जो शरीर के सर पे किया है शरीर के साथ उसको छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। तो बुद्धिमान इसमें है कि वो उसके लिए काम करे जो साथ में ले जा सके, जो छोड़ना पड़े उसके लिए जरूरी है उतना करो, बाद में ज़्यादा मेहनत मत करो, तो छोड़ के जाना ही है, गिनती सब बच्चे ही करेंगे आपके, आप मेहनत करेंगे पसीना बहाएंगे गिनती सब बच्चे करेंगे उसके, अच्छा है बच्चे के लिए तो बुरा ही नहीं है, लेकिन उसके लिए जीवन मत गवाओ अपना, आप जरूरी है उतना करो, कर्तव्य निभा दो, लेकिन जीवन मत व्यर्थ करो उसके अंदर, जीवन बहुत कीमती है और भगवान के लिए है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब लोग एक बार बड़े प्रेम से पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का, एनी क्वेश्चन, कोई शंका, कोई टिप्पणी, कोई कमेंट पूछ लो।
इतनी सरल सहज भाषा में आपने लोगों को ज्ञान दिया है, अब कोई प्रश्न रह ही नहीं सकता।
प्रश्न दो आदमी को नहीं होते हैं, जिसको कुछ नहीं समझा है उसको प्रश्न नहीं होते हैं, जिसको सब कुछ समझ में आया है उसको भी प्रश्न नहीं होते हैं, प्रश्न बीच वालों को होते हैं, और वो पूछना अच्छा है, शर्माने का जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया तो क्या फर्क पड़ता है, पूछो और समझो। स्कूल में हमारा यही प्रण था, एकदम टीचर को बिंदास हम पूछते, सर हमको ये समझा नहीं, दोबारा समझाओ, जब बोलेगा तो पूरी समझ में आ जाएगा, लेकिन बोलेगा सब लोग क्या बोलेंगे तो कभी समझेगा नहीं वो, और पूछने का समय निकल जाएगा, फिर बाद में पूछ भी नहीं पाएगा, क्लास खत्म हो गई, टीचर घर चली गई, तो क्या पूछेगा उसको, अब कब पूछेगा, बोलो टॉपिक तो खत्म हो गया, वो अभी क्यों पूछ रहे हो, वो तो जनवरी में टॉपिक चल रहा था हमारा, दिसंबर में क्यों पूछ रहे हो एग्जाम के पहले, वो समय था तब पूछा था तो काम आया, वो समझ में आया और वो आगे भी काम आया। कोई प्रश्न है किसी का, पूछ लो, संकोच मत करो, मनुष्य जीवन जिज्ञासा करने के लिए, और कोई जीवन में जिज्ञासा नहीं होती है, ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्न जानवर नहीं पूछ सकता है, मनुष्य केवल पूछ सकता है कि ऐसा क्यों, और उसका उत्तर भी केवल मनुष्य के जीवन में ही मिल सकता है। हरे कृष्णा।